ओम शांति। सहज योगी और सहज जीवन, बाबा ने आकर हमें योग सिखाया है। बहुत सारी चीजें इससे मिलती हैं, हासिल होती हैं, हमें शक्तियां भी मिलती हैं, विकर्म भी विनाश होते हैं, गुणों की धारणा करने के लिए भी बल मिलता है, विकारों को त्यागना भी इसका एक बहुत सुंदर पहलू है। बाबा से निरंतर सुखद फीलिंग, केवल विकर्म विनाश नहीं लेकिन प्रभु मिलन का अतीन्द्रिय सुख। तो जब हम बाबा के पास आते हैं, जीवन तेजी से बदल जाता है। सबका बदल गया ना, सभी का बदल जाता है। बहुत सारे बोझ उतर जाते हैं जब हमें ये आभास होता है कि हम अकेले बोझ उठाने वाले नहीं हैं। बोलो आगे। सर्वशक्तिमान हमारे साथ है। ये फीलिंग बहुत ही गुड, इजी, और ये सुंदर योग है। तो इजी योग का एक सीधा सा अभ्यास, बाबा मेरे साथ है, बहुत सहज बात। लेकिन ये बात नशे में आती जाए, फीलिंग में आती जाए, कहने तक न हो। ऐसे ना हो कह भी रहे हो बाबा मेरे साथ है और डर भी रहे हो। कहना भी अच्छी बात है पर इसका नशा हो जाए, हम अकेले नहीं संसार में, स्वयं भगवान हमारे साथ है। इससे और आगे, बाबा मेरा है, ये छोटी चीज नहीं है। बहुत मुरलियां चलाई अव्यक्त बाबा ने, मेरा बाबा अर्थात जो भगवान था अब तक, अब वो क्या है, ये भी नशा हो जाए। वो अब मेरा है, अब हमारे लिए वो दूर की चीज नहीं है। हम दोनों बहुत समीप हो गए हैं, ये चिंतन भी हो और इसको अपने नशे में, अपनी स्मृति में दिनों दिन लाते चलें। भगवान मेरा है। और आगे चलें, जब वो मेरा है तो उससे प्यार भी, और साथ में बोलो बहने बोलो, मेरा, मेरे पर प्यार बहुत होता है, बोलो दूसरा अधिकार होता है, भगवान पर अधिकार। सोच के देखो जरा, कोई सोच भी नहीं सकता संसार में, भगवान पर अधिकार। कैसी भी कोई महान आत्मा इस संसार में है क्या जिनका भगवान पर भी अधिकार हो? और उस अधिकार में बाबा ने कह दिया है, जब भी तुम मुझे बुलाओगे मैं, बोलो मैं। ये योग का और सरल तरीका। तो बाप दादा को अपने पास बुलाया करें। योग केवल बैठ के ऊपर ध्यान लगाने का नाम नहीं है, योग ध्यान नहीं है, योग केवल एकाग्रता नहीं है। इसको सहज समझ लेना है। कई लोग बैठते हैं, मन नहीं लगता, मन बहुत भटकता है, योग लग ही नहीं रहा, क्या करें। इस सब को छोड़ दो। मैंने आपको कुछ चीजें बताई, नशे में रह जाएं, भगवान हमारा साथी है। ना नशा चढ़ता हो तो गीत तो है ना, ये है कौन सा, और दूसरा भी है ईश्वर अपने इस गीत को गाया करें, जरा एक एक लाइन ही गा लिया करें। हैं? हाँ, इतना ही गा लिया करें, और भी बने हुए कई सुंदर गीत तो याद रहे। और दूसरा, मेरा बाबा है वो मेरा है। तीसरा, उस पर मेरा अधिकार है। इन चीजों को अपनी चिंतन में लाना है। जिनका योग कठिन है उसका एक ही कारण है कि चिंतन नहीं है। सब ध्यान दें इस बात पे, चिंतन। तो योग में हम कुछ चीजों को जोड़ लें ताकि किसी को भी, सबको स्पष्ट रहे कि ये चीजें योग में शामिल हैं। स्वमान, यदि हम स्वमान का अभ्यास कर रहे हैं वो भी योग का ही हिस्सा है। अशरीरीपन, फरिश्तापन, केवल हम इस स्मृति में है मैं आत्मा हूं या मैं फरिश्ता हूं, ये भी योग का ही हिस्सा है। और इसमें आगे बढ़ जाएं, पांच स्वरूपों का अभ्यास। मालूम है ना पांच स्वरूप कौन से? वो अभ्यास करना योग का हिस्सा है, उसको कहेंगे स्वदर्शन चक्रधारी होना। चौथी चीज, सूक्ष्म लोक में बाप दादा से मिलन करना, बाप दादा से बातें करना। इसमें आगे भी ऐड करेंगे, उनसे दृष्टि लेना। और जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं, संसार को दृष्टि देना। जो इसको समझ लें, संसार को दृष्टि देना, ये सब योग में आ जाएगा। अगली बात, परमधाम में बाबा के साथ बैठना। अगली बात, संसार को सकास देना। ये सब योग के हिस्से हैं, हमें इनको सरल बना देना है। और योग सरल उनका ही होता है जो इसको कर्म योग बना देते हैं, जो कर्म भी कोई अभ्यास नहीं करते, केवल बैठते हैं योग के लिए, वो सफल योगी नहीं बनते। सबको बहुत ध्यान देना है। एक व्यक्ति रोज 3 बजे उठ के योग करता है, उसको पूरा जीवन हो गया 3 बजे उठकर योग करते करते, लेकिन कोई भी उसको योगी नहीं मानता। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पर ये सच्ची घटनाएं हैं। 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, 3 बजे उठ के योग हो रहा है, पर कोई भी उसको योगी नहीं मान रहा है। क्यों? बहुत ध्यान देना इस बात पर। मान लो उसने सवेरे 6 बजे तक बहुत अच्छा योग किया, लेकिन जब वो कर्म क्षेत्र पर आए तो व्याप्त में, तेरी मेरी में छोटी मोटी गलतियां, दूसरों से अच्छा व्यवहार नहीं, कटु वचन, तो उनकी जो शक्ति थी योग की, जो उन्होंने सवेरे प्राप्त की थी, वो नष्ट हो गई। इसको बाबा ने कहा, इस पर मूल्यां हैं, लीकेज। जैसे किसी बर्तन में लीकेज हो, बहुत बारीक हो, दिखता ना हो, पर धीरे धीरे उससे वो चीज बहती रहती हो, एक दिन में नहीं तो 2-4 दिन में तो खाली हो ही जाएगा। इसका बहुत ध्यान देना है। तो योग के साथ कुछ सुंदर धारणाएं भी हों, तो धारणाओं से योग अच्छा होगा, और योग अच्छा होते होते हमारी धारणाएं और अच्छी सूक्ष्म। धारणाओं की लंबी लिस्ट है, उनमें कुछ धारणाएं हमारे रोज के दैनिक जीवन से जुड़ी हैं और कुछ धारणाएं योग से जुड़ी हैं, जैसे अनासक्त, वृत्ति, वैराग, सुख संत्याग, उपराम, बहुत शुभ भावनाएं सबके लिए, आत्मिक स्नेह सबके लिए, ये महान धारणाएं ये आती जाएंगी जीवन में। छोटी सी बात लेकिन बहुत ध्यान देने की है, हमारे मन में किसी के लिए भी जरा भी नफरत न रहे, घृणा भाव जरा सा भी रह गया तो योग टूटता रहेगा, और वो नफरत की दीवार हमारे इस वाइब्रेशंस को चारों ओर फैलने नहीं देगी। सुख संवाद पे ध्यान देंगे, सबको बहुत अच्छा पुरस्कार करना है, तुम्हेंपन की दीवार को हटाते चलना है, मैं और मेरा यदि रहता है तो भी हमारे योग के वाइब्रेशंस संसार में नहीं फैलते। लेकिन मोटी धारणाएं जो हमारे रोज के जीवन से जुड़ती हैं, सरलता, इस पे ध्यान देना है, हम थोड़ी चर्चा करेंगे इस पर। सहनशीलता, योगी बहुत सहनशील होते हैं। संतुष्टता, भगवान को पाकर भी यदि संतुष्ट न हुए तो उन्हें कोई योगी मानेगा भी नहीं, तृप्त हुए हम। निरहंकारिता, क्रोध मोह, सबके लिए प्रेम शुभ भावनाएं, सहयोग, अच्छे बोल, व्यवहार कुशल, ये सब धारणाएं हैं हमारी। महान विचार, ऊंचे विचार, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये प्रैक्टिकल होगा उनके जीवन। हाई थिंकिंग का बहुत गहरा स्वरूप है, तो विचार भी ऊंचे होते जाएंगे, संस्कार दिव्य होते जाएं। इन धारणाओं पे हमें ध्यान देना है। मैं दो तीन चीजों पे आपका ध्यान दिलाता हूं, एक एक चीज पर एक एक क्लास हो सकती है, पर थोड़े में अहंकार को समाप्त करते चलें। गीता में तीन शब्द आए इसके लिए, अहंकार, अभिमान और घमंड। तीनों अलग अलग हैं पर तीनों से ही हमें मुक्ति पानी है। घमंड एक मोटा स्वरूप है, व्यक्ति बड़ा घमंडी है, दिखाई देता है, बोलेगा भी तो घमंड दिखाई देगा, चाल में भी घमंड दिखाई देगा। उससे थोड़ा सूक्ष्म अभिमान, इसको अपने पैसे का बहुत अभिमान है, इसको अपने पद का बड़ा अभिमान है, और तीसरा उससे भी सूक्ष्म अहम भाव, जिसमें मैंपन आता है, जो सूक्ष्म है, जिसकी शुरुआत ही इससे होती है। अहंकार, संधि विच्छेद कर दो इसका, अहम प्लस कार, अपने को कार मान लेना, यहां से अहंकार की शुरुआत होती है। इसमें स्वाभिमान भी आता है, जो पॉजिटिव पहलू है इसका, गर्व से रहना, स्वमान से रहना, स्वाभिमान से रहना, ये इसके पॉजिटिव स्वरूप है। दूसरी धारणा पे बहुत ध्यान देना है, संतुष्ट मणि। हमारी संतुष्टता का प्रकाश फैलता है चारों ओर, बहुत संतुष्ट होना है। ये भी टॉपिक बहुत बड़ा है, जो खाने को मिलता है उसमें संतुष्ट, जैसा रहने को है उसमें संतुष्ट, जो प्राप्तियां हैं उसमें संतुष्ट, जितनी तनख्वाह मिलती है उसमें संतुष्ट, कार है, बाइक है, जैसी है उसमें संतुष्ट, अपनी साइकिल है उसमें संतुष्ट, वो भी नहीं है उसमें संतुष्ट। अगर हम दूसरों को देखते हैं, उनके घर के आगे बहुत सुंदर गाड़ी खड़ी है, हमारे घर के आगे तो मारुति ही रहती है बस छोटी सी, और सारा दिन गाड़ी का चिंतन, माताओं में थोड़ा ज्यादा होता है, मुक्त हो जाएं। गाड़ियां नहीं, क्या मिलेगा? पुष्पक विमान। हमारे घर के आंगन में खड़े होंगे। घर छोटा नहीं होगा जितना अब है, उसे 100 गुना बड़ा। छोटे से छोटे देवता का घर भी 1 वर्ग किलोमीटर में तो होगा ही, इसलिए तो दुनिया बड़ी होती है। नहीं तो 9 लाख लोगों से विश्व कैसे बनेगा? 9 लाख तो आज एक छोटे शहर में रहते हैं, लेकिन वो ऐसा कंजस्टेड नहीं, छोटे घर नहीं, घरों में ही खाने पीने के साधन सब। पुष्पक विमान भी वहीं, फल फूल सुगंधित भी वहीं, पक्षी भी वहीं, तो अगर गाय हैं वो भी वहीं। तो भविष्य की प्राप्तियों को देखते हुए वर्तमान में त्याग स्वरूप, बहुत इंपॉर्टेंट धारणा है योगी जीवन के लिए। सरलता, सहज भाव से जीवन जीना। योग के साथ मेरा संकल्प है कि मैं आपको इसके बारे में कुछ कहूं, और कहूं नहीं, मेरा लक्ष्य होता है कि सभी बाबा के बच्चे जीवन जीना सीख जाएं। उलझनों में जीवन जीना, चिंताओं में जीवन जीना, बोझ के तले दबे हुए जीवन जीना, ये जीवन नहीं है। सहज भाव से जीवन जीना, साक्षी भाव से जीवन जीना, प्रेम और सुभावनाओं से जीवन जीना, ये है जीवन जीने की कला। तो इसमें सभी सहज भाव अपने अंदर धारण करेंगे, सहज इजी गोइंग नेचर। देखो इसके मैं 2-4 उदाहरण दूंगा आपको, ताकि आप समझ सके मेरा जीवन सहज है या नहीं। हमें कुछ चाहिए था, हम बड़े आनंदित थे, सेवा कर रहे थे, लेकिन हमसे सेवा ले ली गई कि भाई अब तुमने 5 साल कर ली, अब इन्हें कर लेने दो, अब हम क्या होंगे इससे, बोलो, परेशान हो गए। मेरी सेवा क्या आ गया सब, मेरी सेवा क्यों ले ली गई, और बस बाबा भी गया और बहने भी गई, परिवार भी, छोड़ो यहां तो सब बेकार है। ज्ञान ही छोड़ देते हैं कई तो। सहज भाव माना, बहुत अच्छा, अब तक मैंने की, अब ये करें, हम खुश हैं, ये भी तो हमारे हैं, यज्ञ हमारा है। कोई हमसे अधिक योग्य आ गया, उसको चांस मिला, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, ये योग्य है, इनको अवसर मिले। सहज भाव। एक लंबा व्यक्ति जा रहा है, दरवाजा 6 फुट का है, उसकी ऊंचाई 6.5 फुट है, वो क्या करेगा, या कहेगा इस दरवाजे को ऊंचा करो? नहीं, झुक के जाएगा ना। सहज जीवन जीने वाले झुककर चलते हैं, मोल्ड, जैसी आवश्यकता वैसा स्वयं को मोड़ दिया। हाजी करना उनके लिए बिल्कुल सहज होता है। जब बाबा साकार में थे और जब हम समर्पित हुए, तो यज्ञ में 2 लहरें थी बहुत अच्छी पुरुषार्थ की, सेवाओं में ना नहीं कहना है और कुछ मांगना नहीं है। वो में तो आता ही है, किसी से कुछ मांगो नहीं, पर तब यज्ञ बहुत साधारण था, तो वैसे भी मांगने जैसा कुछ था नहीं कि कुछ हमें मिलेगा विशेष, तो सबको संतुष्ट रहना होता था, उसमें ही हम आनंदित रहते थे। पहनने को हवाई चप्पल ही थी पूरे साल, आनंदित रहते थे, क्योंकि किसी दूसरे के पास फर्स्ट क्लास जूते नहीं थे। समस्या कहाँ है, सभी के पास हवाई चप्पल थी, वो भी उन दिनों 2 रुपए की आती थी केवल। तुलना, कंपैरिजन, इससे असंतोष पैदा होता है। छोड़ेंगे इसको? हाँ जी करेंगे, यस, सरलता आ जाएगी। और जो हाँ जी करते हैं, कल की मुरली में तो बहुत पावरफुल बात थी बाबा जी, जो मानते हैं वे माननीय बन जाते हैं, महान बन जाते हैं, माननीय पूजनीय बन जाते हैं। क्योंकि ये एक ऐसी क्वालिटी है जिससे हम सभी का प्यार प्राप्त कर सकते हैं, समीप आ सकते हैं। तो हम लोगों ने भी खूब सीखा था हाँ जी करना। अब हम छोटे थे, ताकतवर भी थे, चार बहनें एक साथ काम बता देती थी, लोग तो परेशान हो जाते हैं, चारों ने एक साथ बता दिया, किसका करें पहले, हम बड़े मजे से करते थे। तो बहुत सीखने को मिला बाबा ने, मुझे तो लगता है मुझे ही सिखाया था 71 में, बहुत अच्छी बात थी वो। यदि तुम सरलचित्त रहेंगे, पांच बातें बताई, नोट कर लें, और मैंने भी इस पर प्रयोग किया था, आप भी करेंगे। यदि खुद सरलचित्त होंगे तो तुम्हारी समस्याएं भी सरल हो जाएंगी। खुद सरलचित्त होंगे तुम्हारी बीमारियां भी सरल हो जाएंगी। ये दो तो बहुत प्रैक्टिकल रोज के जीवन से जुड़ जाती हैं ये चीज। तीसरी, तुम्हारे संस्कार भी सरल हो जाएंगे। चौथा, संबंध संपर्क में रहते हैं वहां भी सरल हो जाएगा सब कुछ, दूसरे भी सहज भाव से मिलेंगे, हम भी सहज भाव से मिलेंगे। और पांचवा, योग भी सहज हो जाएगा। सभी अपने को सरल चित्त बनाएं और ध्यान देंगे, सूक्ष्म रहस्य सभी को जान लेना है। मैं बाबा की वो बात क्लासेज में याद दिलाता रहता हूं, आज बहुत ध्यान से उसको सुनना है और अपनाना है। बाबा की बात है, जो बच्चे साक्षी भाव में रहते हैं वो एक मास का काम एक घंटे में ही कर सकते हैं। बात तो आश्चर्य से भी परे की है, एक मास का काम एक घंटे में, इसका अर्थ हुआ एक दिन का काम दो मिनट में। मैं मनुष्य सोच भी नहीं सकता कि क्या ऐसा भी हो सकता है, दो मिनट में काम पूरा हो जाए। चलो दो मिनट नहीं, मैं कहता हूं कि सारे दिन का काम हम चार घंटे में पूरा कर लेंगे सहज भाव से। क्यों ये होता है? सबसे बड़ी चीज इस संसार में है मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति। दो ही चीजों से तो खेल चलता है ना जीवन का। मन के संकल्प यदि हमारे बहुत हैं तो हम कमजोर होते जाएंगे, और यदि कोई ज्ञानी आत्मा मन को शांत करना सीख जाए, जो श्रेष्ठ चिंतन करते हैं और अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वो सीख लें। यदि कोई ज्ञानी आत्मा, योगी मैं नहीं कह रहा हूं, पहले ज्ञानी आत्मा ज्ञान का प्रयोग करके चित्त को शांत करना सीख ले, सारा दिन चित्त शांत रहे, तो वो संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली होंगे। और ये मन की शक्तियां कार्य शक्ति को बहुत बढ़ा देती हैं, बस यही राज है। और बुद्धि डिवाइन होने से निर्णय ठीक होते हैं, कार्यों में उलझन नहीं होती, सहज भाव से हम काम करते हैं। तो सहज भाव से काम करना इसीलिए आवश्यक है, सहज भाव से जीवन जीने का यही महत्व है कि हमारी मन की शक्तियां इकट्ठी हो जाएं, जिसे कहते हैं साइलेंस पावर। मन जब साइलेंट है तो मन मोस्ट पावरफुल है। छोटा सा लक्ष्य दे देता हूं, नॉर्मल रूप से मनुष्य के मन में 25 संकल्प प्रति मिनट चलते हैं। 25 जब मनुष्य टेंशन में होता है या उसे क्रोध आ जाए या चिंताएं बहुत हो जाएं तो ये स्पीड बहुत बढ़े 40 तक पहुंच जाती है। इसको स्लो डाउन करना है, धीमा करना है 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10, बस इतना ही। अगर कोई ज्ञानी और योगी आत्मा अपने मन को ऐसा सेट कर दे कि हर मिनट में 8-10 संकल्प ही उठें, ये स्थिति है हमारी सतयुग की। जब हम सतयुग में थे तो 8-10 थॉट्स पर मिनट उठते थे, 8-10 संकल्प एक मिनट में। ये स्थिति अब हम ले आए तो हम सफल योगी हो जाएंगे। इसके लिए लंबा समय ज्ञान का प्रयोग। चिंताएं होती हैं, चिंताओं को प्रभु अर्पण करके निश्चिंत रहने की आदत। मन पर बोझ आते हैं, इस बोझ को बाबा को देकर हल्के रहने का संस्कार। बहुत सारी चीजें आती हैं जीवन में, उन सब को खत्म करके साक्षी रहने की प्रैक्टिस। लंबा काल से जिसको होगी उनका मन बहुत शांत रहेगा। और ऐसी आत्माएं, आप बहुत दूर से आए हैं, मेहनत करके आए हैं, मैं आपको एक पावरफुल लक्ष्य दे देता हूं। जब भी मुझे इस भट्टी में आने को मिलता है, हर भट्टी में तो मैं नहीं आ पाता, एक मिस होती है, एक में आता हूं, ये लक्ष्य देता हूं। ध्यान से सुन लेंगे, मैंने सुना 4-4 दिन आपको आने में लगते हैं, 7-8 दिन तो यात्रा में ही। यात्रा में थकते हैं या उसका आनंद लेते हैं? आप उसका आनंद लेना। ये संकल्प करना, जहां जहां हमारी ट्रेन जाएगी, जिधर जिधर हमारी दृष्टि पड़ेगी, वाइब्रेशंस फैलते जाएंगे। योगी चलते फिरते लाइट हाउस होते हैं। तो हम यात्रा नहीं कर रहे हैं, हम वाइब्रेशंस फैलाने के लिए चल रहे हैं। बस मनुष्य के विचारों का ही तो खेल है। यदि वो सोचे अरे 4 दिन लगते हैं, थक जाते हैं, तो वहीं से थकान शुरू हो जाती है, पहले दिन से ही, पहले क्षण से ही। और हम सोच लें वाह पिकनिक है ट्रेन में, आनंद है, आनंद रहेगा, सब ब्राह्मणों का संग है, कितना सुंदर परिवार साथ है, अकेले चलें तो ठीक है, बोर भी हो सकते हैं, सब हैं, खाते पीते डांस करते गीत गाते जाते रहें, ठीक है। तो वो सुंदर चीज है। जिन्होंने साइलेंस पावर बहुत इकट्ठी की होगी, अब ऐसा समय आएगा, सुन ले बस फिर लिख लेना इशारे में, अब ऐसा समय आएगा प्रकृति बहुत तूफान करेगी। वैज्ञानिक भी कहते हैं, बाबा ने भी कहा हुआ है, प्रकृति के 5 तत्व एक साथ आक्रमण करेंगे। अभी आपने सुना ही होगा साउथ पोल पर एक बहुत बड़ा पर्वत बर्फ का, कहा दिल्ली जितना है, दिल्ली की जितनी लंबाई चौड़ाई है ना, 100 किलोमीटर बाई 50 किलोमीटर मान लो, इतना लंबा चौड़ा हिम का हिमालय है। वो भी हिमालय पे तो बर्फ ऊपर ऊपर होती है, ये सारा ही बर्फ का है। वो टूटने लगा, उसमें क्रैक आ गई है, धरती हिली होगी कुछ। अब इतना बड़ा पहाड़ अगर एक साथ सागर में मिल जाए तो सुनामी आ जाएगी बड़ी, और बहुत सारे देश जो सागर के बीच में है, टापू वो डूब जाएंगे, एक सेकंड लगेगा। ऐसे 50 देश हैं संसार में जो फट से डूब जाएंगे। तो यहां तक हम पहुंच गए हैं, अब ये खेल दूसरा होने जा रहा है संसार का। अगले 10-12 साल कुछ और हमें देखना होगा। जिनके पास साइलेंस पावर होगी वो संकल्प करेंगे, मैं प्रकृति की मालिक मास्टर सर्व शक्तिमान, अब आधे घंटे के लिए शांत हो जाओ, प्रकृति पीछे हटने लगेगी। आधे घंटे बाद शुरू होगा, होगा तो जरूर, क्योंकि प्रकृति के अपने विधान हैं, उसकी अपनी एक क्रिया और प्रतिक्रिया है, उसको हम नहीं रोकेंगे, नहीं तो दूसरी जगह प्रतिक्रिया करेगी। हमने केवल उसको आधे घंटे का, 10 मिनट का आदेश दिया, शांत। पानी बहता चला रहा है, सब समाप्त होता जा रहा है, अभी हो गया है, अभी आपके आसाम में भी हो गया है, ऊपर भी हो गया, देहरादून के आसपास, गुजरात में तो बहुत हो गया, जहाँ बारिश नहीं होती थी, जहाँ ट्रेन से पानी जाता था, वहाँ बाढ़ है, भरपूर बाढ़ है, तूफान आ रहा है, पानी बहता आ रहा है, सब कुछ नष्ट करता जा रहा है। आप संकल्प करेंगे इधर से उधर को बहो, जरा वो टर्न हो जाएगा। पवित्र स्थानों की वैसे भी सुरक्षा होती है। कल भी मुझे था कि मैं समाचार तो देखूं क्या बाढ़ आ रही है, तो अचानक बाढ़ का आ रहा था एक चैनल पे, उसमें बता रहे थे कि ये पत्थर गिरा इतना बड़ा था कि पूरी दुकान में समा गया, दुकान तो रही नहीं, उसमें कुछ नहीं बचा, दुकान की जगह पत्थर आ गया, पूरा पहाड़। दूसरा पत्थर गिरा, वो ऐसी जगह गिरा कि जो मंदिर था पास नहीं, उसको उसने सुरक्षित कर दिया। दूसरी जगह पहाड़ टूट के नष्ट कर रहे थे सब कुछ, और इस पहाड़ ने उस मंदिर को सुरक्षित कर दिया। उस पहाड़ से फिर से पानी दूसरी तरफ बहने लगा, मंदिर सेफ है। तो ध्यान देंगे आप सभी, साइलेंस पावर ये बड़े काम करेगी। आप सभी की सुंदर सभा से मैं आप सबको और एक लक्ष्य देता हूं। बाबा को थोड़े भी सही, संपूर्ण पवित्र आत्माओं की जरूरत रहेगी। क्या करेंगी संपूर्ण पवित्र आत्माएं? ये वैज्ञानिकों की रिसर्च है। कल मुझे फिर याद आई वो बात, वैज्ञानिकों को एक लक्ष्य दिया गया था, जापान के या रशिया के कहीं के वैज्ञानिकों की ये बात है कि क्या कारण है जब तूफान भूकंप प्राकृतिक प्रकोप होते हैं तो पवित्र स्थान सुरक्षित रहते हैं, जैसे मंदिर रहा। तो उन्होंने जो रिजल्ट दिया, इसका कारण दिया, वो ये था कि इन स्थानों से जो पवित्र तरंगे फैलती हैं वो विनाश की तरंगों को रोक देती हैं, वापिस कर देती हैं। समझ गए? मंदिर की पवित्र तरंगों से भी बहुत पावरफुल तरंगे होंगी एक बहुत पवित्र योगी की, जहां एक योगी युक्त आत्मा होगी वहां आसपास के अनेक लोग भी विनाश में सुरक्षित हो जाएंगे। तो बाबा को ऐसे पवित्र योगी कुछ चाहिए। इस सभा से 10 मिल सकते हैं, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, सोच लेना। पवित्रता, और फिर है पवित्रता का बल। पवित्रता होना सुंदर बात, लेकिन पवित्रता को बहुत बड़ी शक्ति बना देना वो है सर्वश्रेष्ठ बात। ये शक्ति संसार के लिए वरदानी सिद्ध होगी। तो अपनी पवित्रता को बल बनाते चलें, और पवित्रता बल बनती है महान स्वमान में स्थित होने से, क्योंकि अगर पवित्र होने के बाद भी संकल्प व्यर्थ या साधारण रहते हैं, बात इम्प्योर संकल्पों की नहीं, मान लो किसी के संकल्प भी पवित्र हैं लेकिन वे पर चिंतन में रहते हैं, वे दूसरों को देखने में लगे रहते हैं, वो तेरे मेरे में हैं, तो पवित्रता होते भी पवित्रता का बल नहीं होता, उनकी पवित्रता लाइट हाउस की तरह संसार को प्रकाशित नहीं करती। तो बाबा को ऐसी महान आत्माओं की जरूरत है। मिलेंगे भाइयों में है ताकत, डेडिकेट करना पड़ेगा, डेडिकेशन की जरूरत है कि जब एक बार ये मार्ग चुन लिया, देखो जब बहुत स्ट्रांग लोग होते हैं, एक बार जो मार्ग चुन लिया उसमें परफेक्ट होना है। जैसे आपने कई स्टूडेंट देखे होंगे, आपके घरों में भी हो सकते हैं, बच्चे बहुत देखता हूं मैं, अच्छे बच्चे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, 12वीं क्लास कर रहे हैं, मुझे मेडिकल में जाना है या IIT में जाना है या इधर जाना है, इतने मार्क्स लाने ही हैं, 95%, 97% 12वीं क्लास में, सब छोड़ देते हैं, फोन भी छोड़ देते हैं, फोन रखना ही नहीं है, नो फ्रेंड, नो टीवी, नो इंटरनेट, लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। बुद्धिमान मनुष्य वही होता है जो एक बार अपने लक्ष्य को निश्चित करके उसके लिए डेडिकेट कर दे, अपने को समर्पित कर दे उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कि जब तक वो लक्ष्य नहीं मिलेगा तब तक पीछे नहीं हटेंगे। स्वामी विवेकानंद भी ये बात बहुत कहते थे, जब तक मंजिल न मिल जाए रुकेंगे नहीं, संसार की कोई शक्ति हमें रोक ही नहीं सकती। जैसे कल की मुरली में था, विघ्न विनाशक के पास विघ्न आए तो क्या होगा, विघ्न नष्ट होंगे। बिगड़ी को बनाने वालों की बात बिगड़ जाए तो जल्दी ठीक हो जाएगी ना, वो खुद ही बिगड़ी को बनाने वाले हैं। तो अपनी ऊंचाई को पहचानते हुए सभी लक्ष्य लें। घरों में रहने वाली माताएं नहीं, नौकरी धंधा करने वाले पुरुष नहीं, कौन बोलो बोलो, विश्व कल्याण करने वाले, भगवान की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले, इस संसार की महान आत्माएं हैं। अपने परिवार की बच्चों की पालना तो 84 जन्म करते रहे, अब भी करनी है, मैं नहीं कह रहा उन्हें निकाल दो घर से, लेकिन कुछ और करना है। तो आपके बच्चों की पालना स्वतः ही होती रहेगी। माताएं बहुत ध्यान दें, जैसे छोटे बच्चों के लिए माँ का, विशेषकर माँ का प्यार बहुत आवश्यक होता है ना, माँ बाप का, बाप का भी। कल परसों एक कहानी सामने आई, एक बहन ने फोन किया, मेरा छोटा बच्चा 3 या 4 साल का शायद, मुझे कुछ कंपटीशन देना था, मैंने सोचा के बच्चे को अपनी माँ के पास रख देती हूँ, यानी नानी के पास, बच्चे को नानी के पास छोड़ाई कि मुझे 4-5 मास फ्री होके इस कंपटीशन की तैयारी करनी है। अच्छा कंपटीशन, PCS जिसे कहते हैं, स्टेट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है। तो कहा, मैंने कहा फिर क्या हुआ, कि समस्या हो गई है, वो बच्चा माँ बाप के प्यार के अभाव में का बिल्कुल बोलता ही नहीं है, गुमसुम हो गया है। डॉक्टरों को जब दिखाया और कहानी बताई, का एक ही कारण है, इसको माँ बाप के प्यार की जरूरत थी, अलग रख दिया गया, उदास हो गया, उदास होते होते डल हो गया है। कितनी बड़ी बात हो गई, मैंने तो उसको विधि बता दी इससे निकलने की। डॉक्टरों के पास इसकी दवाई नहीं होती, स्पिरिचुअली हम इसको ठीक कर सकते हैं, समझ गए मैं जो कह रहा था, फिर वहीं आ जाऊं। अगर आप बहुत अच्छे वाइब्रेशंस में रहने लगे, यदि आप बहुत अच्छी स्थिति में रहने लगे, तो आपके परिवार की पालना ऑटोमेटिकली सुंदर होती रहेगी। इस रहस्य को अगर आप जान लें, तो ये जो संसार की बहुत सारी दुविधाएं हैं, चिंताएं हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, बुरे संघ में जा रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, बात सब खत्म। आपके वाइब्रेशन माँ के, अगर एक बच्चे को माँ के प्यार की पालना जागृत कर सकती है, तो श्रेष्ठ वाइब्रेशंस बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए चिंताएं करने की बजाय अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाने पर बहुत ध्यान देना है। तो हम घरों में रहने वाले नहीं, हम लेट आए हुए नहीं, हम तो 2 साल से ज्ञान में हैं, क्या करें, ये सब नहीं। हम महान आत्माएं, सारा संसार हमारी ओर देखता है और देखेगा। हम विश्व कल्याणकारी, सबके पूर्वज, सबकी पालना करने वाले हैं। जरा अपने को इस गुड फीलिंग में लाओ तो यहां से उठ जाएंगे ऊपर, छोटी बातें नीचे छूट जाएंगी और हम महान कार्यों में तत्पर हो जाएंगे। ध्यान देंगे एक छोटी सी और बहुत प्रैक्टिकल बात, जीवन में एक छोटा सा फॉर्मूला अपना लेना है आपको, मुझे याद आ गया अभी, ABCD फॉर्मूला। ये नाम इसलिए है कि याद रहेगा सबको, समझ रहे ना माताएं, ABCD। इसमें ए के दो अर्थ, दो शब्द इससे बनेंगे, एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना, दूसरा ए से अवॉइड करना। देखो हम कहीं जा रहे हों बहुत जरूरी काम से, बीच में लोग लड़ाई कर रहे हों, हम रुकते हैं क्या? हम जाते हैं, हमारी मंजिल वो है, जल्दी जाना हमें, 15 मिनट में वहां पहुंचना है, होता है ना, छोटी सी बात। तो जीवन में अब प्रैक्टिकल अभी करेंगे, जीवन में उन बातों को स्वीकार कर लें जिन्हें हम बदल नहीं सकते, जो हैं और रहेंगी। हम रोए चिल्लाएं, परेशान रहें, बाबा को छोड़ें या पकड़ें, वो तो रहेंगी। बाबा मेरे लिए क्यों नहीं ये करता, छोड़ो बाबा को, कई लोगों में संशय हो रहे हैं, बाबा नहीं करेगा, आगे आगे बिल्कुल नहीं करेगा। नोट कर लें आज ही, भगवानों वाच, अब बाबा है साथी और परीक्षा के समय हो जाएगा साक्षी। इसलिए आप सोचो पेपर आ गए, बाबा बाबा बाबा, बाबा कहेगा मैंने तुम्हें बहुत कुछ सिखा दिया है, पूरा जीवन पढ़ाया है, अब उसकी परीक्षा दो, कितने नंबर लेने हैं। इसलिए अब वो साथी है, साथ का फायदा उठाएं। और बुद्धिमान वही है जो भगवान के साथ का फायदा उठाना जानते हो। जब वो साथ दे रहा हो तब हम साथ न लेते हो, और जब उसका साथ देना बंद हो जाएगा तब पुकारें कि बाबा साथ दो, तुमने वायदा किया था, कहा वो वायदा पूरा हो गया। अब बाबा ने कहा परीक्षाओं में साथ देने का नियम ही नहीं है कि पेपर हाथ में आ गया और टीचर कहे पढ़ा देता हूँ अभी सारा फिर से, होगा कि ब्लैक बोर्ड लगा दूं जो 6 क्वेश्चन तुम्हें हल करने उसका आंसर लिख देता हूं। तो हम सभी आदत बनाएं उन चीजों को स्वीकार कर लें जो हैं और रहेंगी। इस पर मैं आता हूं बी बाईपास, कुछ चीजों से साइड से निकल जाया करें, हर चीजों में रिएक्ट करना जरूरी नहीं है। तीसरा सी फॉर कैंसिल, कुछ चीजों को कैंसिल करें, जैसे हमने बहुत कुछ खाना पीना कैंसिल कर दिया है ना, माताओं ने कर दिया या नहीं, क्या बहुत अच्छे समोसे बिक रहे हैं बाजार में, खुशबू आ रही है, कोई देख नहीं रहा, चारों ओर देखा कोई नहीं है, खा लें, नहीं खाते ना, कैंसिल किया हुआ। डी डू, जो कुछ करना है उसे दृढ़ता पूर्वक करें। तो डिस्क्रिमिनेट करेंगे, परख लेंगे क्या छोड़ना है, क्या स्वीकार करना है, किससे साइड से निकल जाना है, क्या करना है। ध्यान दें, स्वीकार करेंगे, कलयुग के एकदम अंत में आ गए हैं, यहां कलयुग का संपूर्ण प्रभाव है आपके बच्चों पर भी, बच्चों का दोष नहीं, कलयुग का भारी प्रभाव। अगर आप बच्चों को उस प्रभाव से बचाना चाहते हैं कलयुग के, चाहे वो कलयुग के गहन अंधकार में रहें, चाहे उनके साथी संगी फ्रेंड सर्किल बहुत बुरा हो, वो बच सकते हैं। जैसे साथी उन पर असर डालते हैं, वो उन पर असर डाल सकते हैं। माताएं पवित्र भोजन खिलाएं उन्हें, और पवित्र भोजन केवल शाकाहारी भोजन नहीं, बाबा का आह्वान करो, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ये अभ्यास करते हुए भोजन बनाओ। गुड वाइब्रेशंस में प्यार से, प्यार भी बहुत बड़ी चीज है, प्यार और योग। फिर देखो उस भोजन को खा के बच्चों पर क्या होता है। लेकिन माताएं भूल जाती हैं, टीवी भी चल रही है बहुत अच्छी, भोजन भी बन रहा है। ध्यान दें इस बात पे, यदि आप अपने बच्चों को कलयुग के प्रभाव से बचाना चाहते हैं तो स्थिति बहुत अच्छी हो, ताकि बच्चों का आप में बहुत प्यार सम्मान और भावना हो। ध्यान देंगे आप, सोचें हम बच्चों को शिक्षा दें, मेरे बच्चे हैं ना, ऑर्डर दें, ये नहीं करना है, फिर वो आपको ऑर्डर देने लगेंगे, यही करना है। कलयुग का अंत है, इसलिए जो स्वमान में रहते हैं सम्मान उनके पीछे परछाई की तरह चलता है। जितनी अच्छी स्थिति होगी बच्चे आज्ञाकारी होंगे। दूसरा, हमें स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाना होगा, अभी से तैयार हो जाओ, महाविनाश होगा। ये धरा खाली होनी है, किसके लिए? हमारे लिए खाली होनी है, हमें ही खाली करनी है। तो विनाश होगा, यहाँ सफाई हो जाएगी पूरी, जो आंखों से दिखता है वो नहीं रहेगा। सुना है ना बाबा की बातें, ब्रह्मा बाबा की बहुत बड़ी प्रैक्टिस थी ये, जो इन आंखों से दिखता है वो कुछ भी नहीं रहेगा। तो सब कुछ जाता हुआ देखने के लिए भी तैयार, ये मेरा है, ये क्यों चला गया, इसके लिए ही बाबा ने पढ़ाया है, मेरे को तेरे में अभी बदल दो, मेरा है ही नहीं, ये धन संपदा मकान दुकान बच्चे परिवार सब तेरे हैं, तो होगा ही नहीं कि कुछ गया है, पहले ही भेज दिया था हमने, तो ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इस तरह अपने जीवन को बहुत सहज जीवन बनाना है, बहुत अच्छी तरह यहाँ आकर इस पवित्र भूमि पर, संसार का सबसे महान तीर्थ है ये, अब प्रत्यक्ष हो जाएगा थोड़े दिन में, 2020 से खेल बदल जाने वाला है, लाखों आएंगे यहाँ। बाबा ने कहा हुआ है ये मधुबन की नगरी जादू की नगरी बन जाएगी, यहाँ आते ही अलौकिक अनुभव हुआ करेंगे सबको, इस भूमि पर कदम रखते ही वो कहेंगे क्या हो गया, यहाँ में आते दुख तो खत्म हो गए, टेंशन तो उतर गई, किसने ले ली, ये चमत्कार होने लगेगा, किसी को दिखने लगेगा श्री कृष्ण दिख रहा है यहाँ, तो दुर्गा देवी दिख रही है जहाँ तहाँ, ये खेल चलने वाला है, 2020 से शुरू होगा, 30 तक भरपूर चलेगा। तो हम सभी इस भूमि पर आकर, मैं ये बात आपको अंडरलाइन करके ध्यान दिलाना चाहता हूँ, चेक करें अपने को, मैंने अपनी बुद्धि में किसी के लिए नफरत वैर भाव ईर्ष्या तो नहीं रख लिया है, निकाल दें उसको, वो गंदगी है, वो हमें कष्ट देती रहेगी, औरों को नहीं। हमारे घर के डस्टबिन में बहुत बुरी चीज हमने डाल दी हो, सड़ गई हो, बदबू पड़ोसियों को आएगी, हमें कभी कभी डाल देते हैं ना, आम खाए डस्टबिन में डाल दिए, वो उठाएंगे कल 24 घंटे पड़े हैं, उनकी बदबू फैलने लगी है। ये बुद्धि, अपनी बुद्धि को महत्व दें, सोने का बर्तन है, बहुत महत्व है इसका, इसमें हमें गंदगी नहीं भरनी है। अपने को ट्रेंड कर दो, मेरी बुद्धि अमृत के लिए है, मेरी बुद्धि वरदानों के लिए है, तेरी बुद्धि ईश्वरीय शक्तियां और ईश्वरीय ज्ञान भरने के लिए है, मेरी बुद्धि भगवान को अपने में समाने के लिए है, ये गंदगी के लिए नहीं है। पसंद है? पसंद है सबको? पीछे वाले बस इतना काम आप करेंगे, चिंतन, ये बात अंडरलाइन कर लेना, चिंतन। संगम युग पर हम और अच्छा क्या कर सकते हैं? क्या हम वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए? और अच्छे से अच्छा क्या करें? ये बहुत अच्छा चिंतन सभी करेंगे और अपने को बदल के जाएंगे। यहाँ से कोई भी एक चीज अवश्य बदल के जानी है। किसी को क्रोध आता हो, आता होगा बहुतों को, डाउन करें, ये तो सब जानते हैं, वो एक दिन में नहीं छूटेगा, पर एक लक्ष्य होगा ना, मुझे चित्त को शांत करना है, ये क्रोध मेरी चीज नहीं, माया की चीज है, उसको वापस दे देनी है। दूसरा, बोलने का तरीका, मुख से कटु वचन निकलते हो, क्रोध में ये होता है, उसको बदल के जाना है। निगेटिव संकल्प चलाने की आदत हो, उसको पॉजिटिव में करके जाना है। पर चिंतन, पर दर्शन, तेरा मेरा, ये सब छोड़ के जाना है। ये छोटी चीजों में परिवर्तन करेंगे, ठीक हो जाएगा। एक सूक्ष्म चीज जिसपे बहुत कम लोगों का ध्यान है, चेंज करके जाएंगे। कईयों को दुख लेने का संस्कार है, दूसरे ने कुछ कह दिया, दुखी हो गए, दूसरों ने गलत व्यवहार कर दिया, खुशी चली गई, सारा दिन उसको ही याद कर रहे हैं। दुख लेने का संस्कार ना हो। दुख वही हर सकेंगे जो लंबा काल दुखों से मुक्त रहेंगे। दूसरों के विघ्न भी वही हट सकेंगे जो लंबा काल विघ्न मुक्त जीवन जिएंगे। तो बहुत ध्यान देना है सबको, ठीक है। हम आधा घंटा, आप तो 7:30 तक योग करेंगे, मैं 7 बजे तक कराऊंगा आपको कमेंट्री से। तो बहुत चिंतन करके अपने को महान बनाने का संकल्प करना है सबको। तो मिलेंगे ना महान योगी तिनसुकिया सब जोन से, मिलेंगे महान योगी जो तिनसुकिया का नहीं, ब्रह्मपुत्रा में बाढ़ भी आ गई हो उसको भी दृष्टि दें तो बाढ़ भी डाउन हो जाए, ऐसे योगी। ब्रह्मपुत्रा भी हर साल विनाश कर देती है ना, इस साल भी चल रही है बहुत बार। तो हम प्रकृति के मालिक हैं, बहुत महान हैं। अब भाई पहला गीत वही बजा देना, ईश्वर से हमने मुलाकात की है, फिर कमेंट्री करेंगे। लाल लाइट कर दो, बहुत अच्छा गीत है ये।
प्रभु से मिलन की मिली है खुशी हम को प्रभु से मिलन की, वरदानों की हम के बरसात की है,
वरदानों की हम के बरसात की है।
ईश्वर से हमने मुलाकात की है, बात की
की महान आत्मा। प्रकृति की कुटिया में विराजमान। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, बहुत तेजस्वी आत्मा, भकुटी सिंहासन पर स्वराज्य अधिकारी हूँ। इस देह को छोड़कर मैं चमकती हुई मणि उड़ चली अपने धाम। उड़ती जा रही हूँ, पहुंच गई अपने स्वीट साइलेंस होम में। ये मेरा घर, चारों ओर गोल्डन रेड प्रकाश फैला है, चारों ओर डीप साइलेंस, स्वीट साइलेंस। शांति धाम की संपूर्ण शांति मुझ में समाने लगी। मैं डीप साइलेंस में ऊपर हैं ज्ञान सूर्य शिव बाबा, उनके नीचे मैं, ज्ञान सूर्य का तेजस्वी प्रकाश उनकी चारों ओर फैलती हुई किरणें जैसे कि सारे ब्रह्मलोक को जगमगा रही हैं। मैं बाबा के साथ, उनकी संपूर्ण किरणें मुझ में समा रही हैं। बाबा की शक्तियां स्वयं में भरकर मैं आत्मा नीचे आती हूँ, अवतरित हुई अपनी देह में। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान शिव शक्ति हूँ। बाबा का आह्वान करते हैं, हे सर्वशक्तिमान, मेरे मन के मीत अपना धाम छोड़कर हमारी छत्र छाया बन जाओ। हमारी आवाज सुनकर सर्वशक्तिमान नीचे उतरने लगे। अपनी तेजस्वी किरणें फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। आ गए हमारे सिर के ऊपर, नीचे मैं शिव शक्ति, सिर के ऊपर सर्व शक्तिवान छत्र छाया। बाबा की किरणें मुझ में समा कर सारे संसार में फैल रही हैं। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, मस्तक में चमकती हुई मैं परम पवित्र आत्मा, प्रकाश के शरीर में विराजमान, मेरे अंग अंग से पवित्र किरणें चारों ओर फैल रही हैं। परम धाम में पवित्रता के सागर बुद्धि को स्थिर कर दें, उन पर केवल एक पतित पावन पवित्रता के सागर बाबा की ये पवित्र किरणें फाउंटेन के रूप में मुझ पर पड़ रही हैं। बाबा की पवित्र किरणें मुझ में समाकर चारों ओर फैल रही हैं। प्रकृति के पांचों तत्व इन्हें ग्रहण कर रहे हैं। मैं फरिश्ता सूक्ष्म लोक में आकाश के ऊपर यहाँ चारों ओर सफेद प्रकाश है। परमानंद है। ये फरिश्तों की दुनिया है। सामने देखें बाप दादा ब्रह्मा बाबा, उनके मस्तक में चमक रहे हैं सर्वशक्तिवान महाज्योति। उनकी किरणें सामने से मुझ पर पड़ रही हैं। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। उनके हाथ से शक्तियों की किरणें मुझ में समाने लगी। बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया और वरदान दिया, बच्चे सुखी भव, श्रेष्ठ योगी भव। अब स्थित हो जाएं, सामने से बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं।
परिस्तारू परत कर।